ಸಂತಪ್ತ ಮಾನಸ ಶಾಂತ पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आरंभ की थी। कितनी विचित्र बात है कि हम मुक्ति के मार्ग की खोज में निकले थे और हम ये पूछ रहे थे कि भाई हमें मोक्ष का मार्ग रास्ते हैं इतने, इनमें से मोक्ष का रास्ता कौन सा है। तो किसी ने बताया कि तीन रोड हैं, एक मोक्ष में जाता है, एक स्वर्ग में जाता है, एक नरक में जाता है। तो ये नरक वाला रोड तो बहुत उबड़ खाबड़ है, जंगल वंगल बहुत हैं, लेकिन ये स्वर्ग का रोड बहुत अच्छा है, एकदम सिक्स लेन बन गया है, एकदम अमेरिका जैसा इसमें। और हम उस रोड को अच्छा देखकर रोड पर ललचाने लगे, हमें इस पर चलना चाहिए। अंतर समझ रहे हैं ना, हमें मोक्ष में जाना है। और ये ग्रंथों में मोक्ष शास्त्र नाम रखा तत्व सूत्र का तो है ना, सबसे पहला सूत्र है संबंध में ज्ञान तत्व प्राणी मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, माने धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग और कर्म का मार्ग, अब उस कर्म के मार्ग पर हम रीझने की कोशिश करने लग गए। ये पूछ रहे थे कि हमें मुक्ति का मार्ग किस पे जाना है, और जब ये पता लगते ही कि मुक्ति का मार्ग ये है और बाकी के दो मार्ग मुक्ति के मार्ग नहीं है, तो हमारा कर्तव्य क्या था। यदि हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति में पहुंचना है तो उसमें रास्ते पे निकलना था, लेकिन हमारे तो वहीं से अपशगुन हो गया कि ठीक है चलेंगे तो अपन मुक्ति के मार्ग पे ही, पर वो बता रहे तो समझ तो लो उसमें क्या दिक्कत है। वो बता रहे हैं इस मार्ग के बारे में बता रहे हैं, इस मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने बता दिया ना कि ये मार्ग अपना नहीं है, कि मोक्ष का मार्ग है अपना, अपन को इस पे जाना है। ठीक है, ये कहाँ का है, रास्ते में क्या है, अनुकूलता है कि नहीं है, सड़क तो ठीक है कि नहीं है, ये समझने में तुम्हें क्या दिक्कत है। और जहाँ पहुंचेंगे वो जगह कैसी है, वहां से ठहरने वहरने की बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं है, इतनी बढ़िया है तो ये हिसाब से सोच सोच करके हम क्या रास्ता बदल सकते हैं। अच्छा, हम अपने छाती पे हाथ रख करके विचार करें, हम सम्मेद शिखर जाते हैं यहाँ से, और सम्मेद शिखर में 13 पंथी 20 पंथी और श्वेतांबरों की कोठी 3 कोठियां हैं, और श्वेतांबरों की कोठी की व्यवस्था बहुत एवन है, और उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी एवन है। तो हम सचमुच जाकर वहाँ लुहा कर वहाँ ठहर नहीं जाते, क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? मेरा मतलब ये है कि भाई तुम सम्मेद शिखर आए हो और ये तुम इस धर्म की मान्यता वाले धर्म करने आए हो, क्या अपने विचार से आए हो, तो तुम्हें साधर्मी भाई कहाँ मिलेंगे। मान लो कि वहां पर दिगंबर संत हैं, दिगंबर विद्वान हो, जो कुछ भी होगा दिगंबर अथवा जिसके लिए तुम आए हो वही मिलेगा ना। अभी तुम्हें धर्मशाला पसंद आई तो भोजनालय पसंद आया, तो मंदिर भी पसंद आ जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया बना है, एकदम एवं संगमरमर का बढ़िया बढ़िया कारीगरों के द्वारा। भगवान भी पसंद आ जाएंगे, एकदम एकदम चमकदार बढ़िया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम मूलतः जो बात है हमारी, हम उसको भूल जाते हैं और दूसरी बात करने लगते हैं। जिस काम के लिए हम निकले हैं उस काम से हम भटक जाते हैं, है ना। यानी ये शुभ भाव अच्छा है कि नहीं है, इसके विचार करने का अवकाश ही कहाँ है। ये कल अपनी यही बात चली थी फिर 1 घंटे तक, और खत्म भी यही थी, सुई भी यही से हुई थी कि कर्म में दो भेद करना सबसे बड़े झगड़े की बात तो ये है क्या। और जो ये छंद अमृत चंद्राचार्य का है 101वां छंद, एको दूरात्य जति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमान
संसारो जात
लेकिन शूद्र काया उदरात है ना, कहीं है उदरात युगपत निर्गत। शूद्र शूद्रा के पेट से एक साथ पैदा हुए है ना, युगपत निर्गत है ना, दो ही बचा ना, दो दो पैदा हुए ना, माने एक शूद्रा के पेट से जुड़वा भाई पैदा हुए। अपने हिंदी में तो जुड़वा शब्द का ही प्रयोग किया, संस्कृत में कोई ऐसा अच्छा शब्द नहीं मिला होगा उन्हें। पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई है ना, तो इसके है शूद्र काया उदरात युगपत निर्गत। शूद्र का के पेट से दोनों ही एक साथ निकले, एक साथ पैदा हुए दोनों। और एक जैसा समझ लो ना कि अस्पताल में दो पैदा हुए, वहीं पर एक ब्राह्मणी के भी बाल बच्चा पैदा होना था, तो वो मरा पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया। तो उस ब्राह्मणी ने उससे निवेदन किया कि तेरे दो हैं, तू कैसे पालेगी, बहुत दिक्कत होगी, तू एक बच्चा मेरे को दे दे, मैं पालूंगी, बहुत अच्छी तरह से पालूंगी और ये बहुत अच्छा बनाऊंगी, इसकी सेवा करूंगी। तो उसने उसे दे दिया। क्या अब वो एक भाई ब्राह्मण के घर पला और एक भाई शूद्रा के घर पला, और उनको ये बात बच्चों को नहीं बताई गई। खैर उस बच्चे को तो बताने की बात ही क्या थी जो शूद्रा के घर में पला है, लेकिन जो ब्राह्मण के घर में पला था उसको भी ये नहीं कहा गया कि तू शूद्रा का बेटा है, क्योंकि कोई क्यों कहेगा, उसके माँ बाप भी क्यों कहेंगे, क्योंकि वो तो ब्राह्मण तो ऊंचा कुल है ना, तो वो ब्राह्मण समझ के अब क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों के कुल में मदरा का सेवन नहीं होता है, तो वो मदरा का सेवन नहीं करता है। क्या क्यों नहीं करता है कि ब्राह्मणत्वाभिमाना कि मैं तो ब्राह्मण हूं और हमारे कुल में तो इसको छूना भी पाप है। देखा इसमें दूरात त्यजति मदराम ब्राह्मणत्वाभिमाना, ब्राह्मणत्व के अभिमान से एक ने मदरा को दूर से भी हाथ छोड़ दिया है, और अन्य शूद्रा अहम, और दूसरा बच्चा समझता मैं तो शूद्र हूँ, और अहम इति स्नाति नित्यम तैव, माने वो मदरा में ही नहाता है, माने खूब मदरा का सेवन होता है उनके घर पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो पी जाती है। आपने वो बच्चन की कविता देखी मधुशाला, वो मधुशाला जब लिखी गई थी तब तो लिखी गई थी, और उसके बाद भी वे समय समय पर उसमें छंद जोड़ते रहे। क्या तो बहुत पुरानी बात है, करीब 45-50 साल पुरानी बात होगी, कि सर बिरसा कॉलेज में दादा वो आए थे कवि सम्मेलन में, तो वहां हम भी मौजूद थे भाग से गर्मियों की छुट्टी में, और वहां पर उनकी कविताएं मनसा बल्ला पर बोलने के लिए तो उन्हें बहुत लोग आग्रह करते ही थे ना, तो वो तो बहुत पढ़ी है, सब लोगों के हाथ में पहुंच गई है, सबने पढ़ी पढ़ाई है, तो उन्होंने कहा कुछ नई कविताएं सुनाऊंगा, मैं नहीं सुनाई, लेकिन बाद में लोगों के आग्रह से उनने कहा मैंने मधुशाला पर भी नए छंद लिखे हैं वो सुनाता हूं। उनमें एक छंद का भाव ये था, पंक्तियां तो मुझे याद नहीं है, कि भाई हमारे कुल में तो मदरा खूब पी जाती है, और हम तो निरंतर इतनी पी है कि एकाध भम में नहीं पिए तो भी वो हमारे खून में उतना नशा है, वास्तव में वो मधुशाला कोई शराब की प्रशंसा में लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि वो व्यंग है, जैसे कि मंदिर मस्जिद झगड़े करते और प्रेम बढ़ाती मधुशाला, कि मंदिर में हम जाकर के एक साथ नहीं बैठ सकते हिंदू मुसलमान, जैन अजैन दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी बीसपंथी और भी जितने समझ लो आप, लेकिन मदरालय में जाकर दीप राग भाव से कोई किसी जाति का वो कोई पूछता नहीं है, सब एक टेबल पर तो एक प्याले से, वो कांच के होते थे, आजकल तो कांच में सब पीने लगे, उस वहां तो कांच में कोई पीते नहीं थे, वो धुलते थे, मंजते नहीं थे, घर में बर्तन तो मंजते हैं ना अपने, तो उसको एक एक प्याले से ही पीना बोलते सब। कितने दीद राग भाव से, कोई राग देश नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई प्रांतवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटी जाति नहीं है, बड़ी जाति नहीं है। मैंने इसने ये व्यंग किया कि तुम्हारे मंदिरों से अच्छी तो वो मधुशाला है, ऐसी कई बातों पे ऐसे व्यंग है उसके, ये सब लोगों से कि भाई वहां भी कुछ गुण है, कुछ गुण बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर इतने फिरके हैं, इन जातिवादों से इतने लड़ते हैं, तो जो इस पंक्ति है ना कि मंदिर मस्जिद बैर कराते और प्रेम कराती मधुशाला, तो इस तरह के व्यंग हैं उसमें। तो जैसे वो कहता नित्य स्नात तयेव, स्नाति में नहाना भी होता है और खाना भी होता है ना, तो कहते वो निरंतर उस मदिरा का पान करता है, क्योंकि मैं तो शूद्र हूं और मेरे कुल में तो खूब पी जाती है। हमारे आज भी आप देखो ना कि बड़े विद्राग भाव से आप कहते हमारे यहाँ तो हम जैनी हैं, हम तो आलू जमी कर नहीं खाते, हम रात में नहीं खाते, हमारे यहाँ तो चलता है सब, हमारे यहाँ तो सब सब खाते हैं, और रात में खासकर जो होता है तो फरारी बोलते हैं, तो आलू वगैरह जी क्या है फलाहार, फरारी माने फलाहार, तो हम वही खाते हैं, हम बिल्कुल शांति से सुन लेते हैं, हमारे यहाँ ये होता, हमारे यहाँ ये होता। मेरे कहने का अर्थ है कि उस मदरा में नशा है, अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए वो नहीं पीना, इसकी कोई बात नहीं करता। तो बनारसी दास जी ने और अमृतचंद्राचार्य ने खासकर इतनी खतरनाक बात की है, तो हमारा ध्यान नहीं जाता है कि तुमने शराब नहीं पी और उस शूद्र के बेटे ने पी, हमारी दृष्टि में तो दोनों शराबी हैं, क्योंकि वो शराब भले ही नहीं पी इसने, इसने ब्राह्मणत्व के अभिमान की शराब पी और उसने शूद्रत्व के अभिमान की शराब पी, क्या ये भी होश में का है? वो लोगों में से सीधे मुंह बातें ही नहीं करता है, हमारा तो कुल में, हमारे कुल में तो ये नहीं होता, हमारे कुल में तो ये नहीं होता, क्यों? लेकिन इसे क्या है, मैं थोड़ी खतरनाक बात कहता हूं कि भाई हमारा तो पूरा परिवार एकदम एक सी विचारधारा का है, शुद्ध है, साफ, तो क्या फर्क पड़ता है? तेरे लिए तेरा ही होना पर्याप्त है, बाकी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? होवे तो बहुत बढ़िया बात, हम चाहते हैं सारा जगत होवे, तो हमारे परिवार वाले होवे, इसमें कौन सी हमको बुराई की बात है? लेकिन ये कोई अभिमान करने की चीज नहीं है, क्या फिर वो जाकर के अभी परिवार की शराब पीने लग गया? मैंने इतने दिनों से ये नहीं खाया, मैं इतने दिनों से नहीं खाया, 30 साल से मैंने सिनेमा नहीं देखा, वो सिनेमा नहीं देखने की शराब पीने लग गया, मैंने रिकॉर्ड बना लिया है। मैंने कोई ना कोई क्रिया से जिसका धर्म से दूर का भी संबंध नहीं है और उससे अपने को बड़ा मानकर और सारे जगत को तुच्छ मानने लगा, ये कहते हैं ये शराब पीना है, इनकी समस्या वो शराब नहीं है, इनकी समस्या तो ब्राह्मणत्व के अभिमान की शराब है। अपने यहां जो 8 मन हैं, तो उसमें कोई ये विदेशी देशी ये मऊआ की ये इसकी ऐसे भेजें क्या? क्या तो कौन सी शराब पीने की बात है उसमें? ज्ञानम पूजा गुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू अष्टौ वाश्रित मानितम स्मय माहु विगत स्मया, लिखा ना? ये 8 मद कौन है? सबसे बड़ा बहुत अच्छा संदेह है कि ये 8 मद हैं, ये किसने कहा है? इसमें माहू गतस्मया, कि जिसने ये आठ प्राप्ति शराब पीना बंद कर दिया है। इसमय माऊ गतस्मया, जिसका इसमय गत हो गया है, जो आठों मद से रहते हैं, ऐसे अनंत भगवान ने ये बात कही है। गतस्मया का अर्थ समझते ना, आठ मद से रहते जो भगवान हैं, उनने इन आठ चीजों की आठ प्रकार की शराब बताई है, इन्हें नहीं पीना चाहिए। और पहली शराब का नाम क्या है? ज्ञानम जाति कुल। देखो देखो, जाति मद और कुल मद, मैं अपने पुराने विद्वानों की पकड़ की बात बताता हूँ। ये दौलत राम जी जो बहुत ही लौकिक दृष्टि से एक छीपा का काम करते थे, पहले साड़ियां जो आगे ऐसी बनती नहीं थी, तो वो सफेदी कपड़ा होता था, उसपे ऐसे छाप छाप के रंगीन बना लेते थे, बना करके वो काम करते थे। और उन्होंने कुल मद को और जाति मद को एक नया रूप दिया। पिता भूप अरे मातुल नृपे जो हुए न को माज भाने। अभी देखो, एक कुल मद को उन्होंने कहा पिता भू, पिता राजा हो तो उसका अभिमान करे, तो ये कुल मद हुआ। यानी कुल मद को राजा का, बाप का राजा होने से कहा, और मामा उसे जाति मद कहा। मैं पूछता हूँ कैसे निकाला ये आप, फिर मैं थोड़ी सी खराबी भी बताऊंगा, घबराना नहीं, पहले पूर्ण बताऊंगा। यानी राजा मामा हो तो जाति मद क्यों, और पिता राजा हो तो कुल मद क्यों? सोचो, बोलो। सर्वज्ञ सोचू, सर्वज्ञ भी क्यों? ये उस समय की जाति व्यवस्था को भी बताता है। हमारा कुल जो पिता का कुल होता है वही कहलाता था। इसका सीधा उल्टा कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पिता हम जिस कुल में हैं उसी कुल का होगा, दूसरा नहीं, दूसरे कुल वाला नहीं हो सकता। और मामा उस कुल वाला गारंटी से नहीं होगा। बताते हैं ना, गोत्र बताते हैं ना, समझे ना, मामा नहीं होगा। तो मामा पहले क्या होता, शादियां गोत्र में नहीं होती थी, कुल में नहीं होती थी, और जाति के बाहर भी नहीं होती थी। तो मामा हमारी जाति का तो होगा लेकिन कुल का नहीं होगा, कुल के बाहर का होगा और जाति के भीतर का होगा। तो इसलिए मामा हो तो उसे जाति मत कहा। अंतर समझे? ये दौलत राम का कमाल था, क्योंकि इसके पहले ऐसा प्रयोग कहीं नहीं देखा गया, सबसे पहले उसमें ही मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं आप मान नहीं सकते, टोडर मिल जी के पहले कहीं गीत और अगीत मिथ्यात्व की चर्चा नहीं आई पूरे शास्त्रों में, ढूंढे ढूंढे नहीं मिलती है कहीं भी। फिर टोडर मिल जी का वर्गीकरण है, और उन्हें इतना बड़ा आधार बनाया उसे कि बिल्कुल पूरे ग्रंथ की रचना उसी हिसाब से की। और समझ लिए उनके जो सात अधिकार हैं, आठ अधिकार, वे आठ अधिकार तो मिथ्यात्व के वर्णन में है और गीत अगीत के अनुसार, उसके पहले नहीं मिलते। कहीं निकालो कि निसर्ग तो अधिकमान लिखा है तो निसर्ग माने होगा, तो वो अग्रीत समझ लो, फिर दूसरा अग्रीत हो, ऐसा मान लो। तो एक बहुत मौलिक, यानी एक ऐसी चीज है कि जिस पर टोडर मल जी में सैकड़ों आचार्यों को निशावर किया जा सकता है, और ये ऐसी दौलत राम जी की है कि पिता और मामा कहकर के उन्होंने कुल मद और जाति मद को डिफाइन किया। अब इसमें थोड़ी कमी क्या है, इसका मतलब है कि जिसका पिता राजा होगा अकेला कुल मद वाला वही होगा, और जबकि कुल मद वाले तो लाखों हो सकते, लाखों नहीं, हर मिथ्या दृष्टि कुल मद वाला तो है ही, और मामा राजा होगा और राजा ही नहीं रहे कोई, तो आबाद के जमाने में तो ना कोई मामा राजा है ना पिता राजा है, तो किसी को कुल मत और जाति मत तो होगा ही नहीं है? लेकिन उसमें मूल मुद्दे की बात यह है कि तुम यदि किसी लोकमान्य कुल में पैदा हुए हो, उस लोकमान्य कुल का तुम्हें अभिमान है, तो उसके रास्ते से तुम्हारा मत जो है वो कुल मत कहलाएगा। अब इसमें भी एक थोड़ी कमी है, क्योंकि फिर तो जो बड़े कुल वालों को ही कुल मत होगा ना, इस पर अपन ने विचार किया धर्म के दर्शन किताब में है ना, तो कहते हैं कि मैं छोटे कुल का हूं ऐसा मानकर जो हीन भावना हुई दीनता, उसका नाम भी कुल मदई है, तब वो जाकर हर मिथ्या दृष्टि पे घटित होगा। क्या समझे ना, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो इस मत से ग्रस्त हैं, और हम एक माँ और बाप को राजा से पद से नहीं बांध सकते हैं, न कुल से ही बांध सकते हैं और न जाति से ही बांध सकते हैं। भले इसका कुल मत नाम हो, भले इसका जाति मत नाम हो, लेकिन सिर्फ इतना है कि हम में जो छोटे बड़ेपन की भावना है वो इस कुल और जातियों के लक्ष्य से हुई है। क्या ऐसे बने सबसे क्या धनमद गरीब को भी हो सकता है, ज्ञानमद अज्ञानी को, अज्ञानी को ही होता है, वहां तो ज्ञानी को होता ही नहीं है। ये सब वहां तर्क माने विचार की बात है, चिंतन की बात है, कोई बड़ी बात है नहीं है। अभी जैसे कि टोलेमल जी का ये वर्गीकरण पहले नहीं मिलता है, और दौलत राम जी का ये कुल मत और जाति मत के शब्दों का प्रयोग पहले नहीं मिलता है, ऐसे ही इन मदों की चर्चा होते वक्त कहीं ये चर्चा भी नहीं है क्या कि गरीब को भी धनमद हो सकता है। तो ये अपने धर्म के दर्शन किताब के पहले अपने लिखा, सबसे पहले लिखा, अब उसकी पहले कोई निकाल के बताओ शास्त्रों में से, बीज तो कहीं ना कहीं विद्यमान होंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस तरह से उन धर्मों के विवेचन में ये बात नहीं आई होगी। तो ये भी मौलिक, मेरा मौलिकता मौलिक है जिसे बोलते ना, यदि मौलिकता निकालें तो ये मौलिकता है, वो भी कहते हैं उन्हें जानबूझ के ऐसा उदाहरण क्यों बनाया कि वे शूद्र के जुड़वा भाई हैं, ये बताना है उस ब्राह्मणी के भी तो जुड़वा भाई हो सकते थे ना, क्यों और एक ब्राह्मण के यहां पला हो और एक शूद्र के यहां पला हो, ऐसा भी तो हो सकता था ना, तो बेचारी शूद्रा के ही पेट में दो बच्चे क्यों डाले, ये तो अपने चंद्र के उदाहरण तो अपने दिमाग से बनाया है ना, कोई उदाहरण कहीं पहले था नहीं, अमृतचंद के दिमाग की उपज है, क्यों तो उसके पीछे भी उनका एक चिंतन है, क्योंकि वो ब्राह्मणी अपने बच्चे को शूद्र को देती ही नहीं, वो गोद भी किसी को देती तो वो शूद्रा को देती, और उन्हें तो ये बताना है कि दोनों शूद्र हैं, ये नहीं बताना है कि दोनों ब्राह्मण हैं, यहाँ तो पुण्य और पाप को दोनों को पाप है ये सिद्ध करना है, दोनों पुण्य है ये सिद्ध नहीं करना है, क्यों वो गाथा कौन जो कल अपन ने बोली थी, कौन सी बोली थी योगसार की, कि पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, कोई बिरला ज्ञानी पुण्य को भी पाप कहता है, तो दोनों को तो पुण्य को भी पाप सिद्ध करना है ना, क्योंकि पुण्य में तो एक कथन जित किसी को उपादेय बुद्धि है, उनको दोनों को हे बताना है, दोनों ही हमारे लिए उचित नहीं है, ये दृष्टिकोण होने से उन्होंने ये शूद्रा का उदाहरण बनाया है ना, ये को दूरा त्यजति मदराम ब्राह्मणत्वाभिमानात पर अन्य शूद्रा स्वयं अहम इति स्नाति नित्यम तैव है ना, बहुत स्पष्ट अर्थ। अब दोनों ही क्यों एक साथ शूद्रा के पेट से निकले थे, सूक्षा साक्षात तदपि चरतो जाति भेद भ्रमेण, तो इन दोनों हैं दोनों शूद्र, लेकिन उनको जाति भेद का भ्रम हो गया, ब्राह्मण को ये भ्रम हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ और शूद्र को ये भ्रम हो गया कि मैं शूद्र हूँ। शूद्र तो सही, तो सही है ना, सम्यक ज्ञान हो गया ना। क्यों वो इसलिए कहना चाहते हैं कि वो शराब पीता है तो शराब के गुण देश के आधार पर नहीं पीता है, मेरे कुल में पी जाती है इसलिए पीता है और मेरे कुल में नहीं पी जाती है इसलिए नहीं पीता है। शराब अच्छी है कि बुरी है उसके आधार पर वो निर्णय नहीं करता है। होना क्या चाहिए बोलो विवेक से, कि उस वस्तु के गुण दोष के आधार पर निर्णय होना चाहिए ना। ऐसी में एक बात शाकाहार के बारे में कहता कि बहुत से लोग लिखा और बोलते भी हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इससे हार्ट की बीमारियां नहीं होती, इससे ये नहीं होता, इससे ये नहीं होता, मांसाहार में इतने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब है। तो मैं ये कहता हूं कि ये बात जो तुम कह रहे हो 100% सही भी होगी, लेकिन इसके विरुद्ध भी तर्क आ सकते हैं। क्यों, क्या एक आया था यहां पहले, मैंने कभी सुना है तुम्हें, यहीं पर जयपुर में एक सेमिनार हुआ था मेडिकल कॉलेज की तरफ से, और जो अपना अस्पताल है ना SMS, उसके पीछे एक हॉल है उसमें, और जब लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे तब, अब वो बलराम जाखड़ अपने यहां आए थे अध्यक्ष बन के उस सभा के, और सारे मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो उसके प्रवक्ता थे और वो ही उसके कन्वीनर वगैरह सब वो ही थे। तो एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर DS कोठारी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो नाम सुना ना, उनके लड़के डॉक्टर ललित कोठारी अभी भी होंगे उस कॉलेज में प्रोफेसर थे, और वो शायद उनके प्रमुख कन्वीनर वगैरह थे ललित कोठारी। तो उसमें मेरा मैं भी निमंत्रित था एक प्रमुख वक्ता के रूप में। तो जो डॉक्टरों के व्याख्यान हो रहे थे, जब वो ललित कोठारी का व्याख्यान हुआ तो उसने मालूम क्या बोला कि शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर है, कि शाकाहार के लिए यदि प्रॉपर डाइट बनाना हो तो 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। विटामिन सी के लिए आंवला लाओ, विटामिन डी के लिए कोई दूसरी चीज, दूध पियो, विटामिन ए के लिए फलाने चीज, डी के लिए ये, जितने मिनरल्स हैं विटामिन्स हैं सब चीजों के लिए 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तब प्रॉपर डाइट बनेगी। और मांस में बस वो सब चीजें एक साथ विद्यमान है और प्रॉपर अनुपात में है। अगर गाय इतनी बलिष्ठ थी, उससे भी जिंदा थी, इससे बढ़िया थी, तो सब चीजें उसे भी चाहिए ना, तब उसके मांस में भी सब चीजें एक साथ है, इसलिए वो एक जगह ही मिल जाती हैं। क्या इसने ये तर्क दिया और ये कहा कि इसलिए हमारे भारतवासियों का स्वास्थ्य कम, मांसाहारियों का स्वास्थ्य अच्छा इसलिए रहता है कि उसे सब प्रॉपर डाइट मिल गई ऑटोमेटिकली, और ये अपने शाकाहारियों को 25 चीजों में से पांच, उसने कहा था किसान एक रूखी रोटी बाजरा की और नमक रख के उस पर वो खा जाता है। अब उसमें वो सब चीजें होती नहीं, इसलिए वो बीमार रहता है, वो कमजोर होता है, उसे उसमें प्रॉपर डाइट नहीं होती है। वो इसलिए वो बहुत अच्छी विस्तार से सब चीज वो समझा करके ये बात बताई थी। यानी वो इतना बढ़िया भाषण था कि जितने शाकाहारी हुआ हो सबने भी एक दफे तो सोचा होगा कि भैया शाकाहारी में कुछ नहीं रखा है, यदि स्वस्थ रहना है तो ये मुझको बहुत ही बुरा लगा। और डॉक्टरों की सेमिनार समझे ना, वो मांस भक्ति दे प्रेसिडेंट जाट है ना, जाट में कौन बलराम जाकर। लेकिन मेरा नंबर आया तो मैंने बहुत एकदम कड़क तर्क युक्तियों से अपनी बात को रखा, और वो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूं कि बहुत मान लें मैं। मैंने उनसे कहा कि ये शाकाहार पर सम्मेलन हो रहा है, सेमिनार हो रहा है कि आहार पर, कौन सा प्रॉपर डाइट पर हो रहा है क्या, कि कौन सी डाइट अच्छी है, इस पर ये सब्जेक्ट है क्या इसका, कि इस सेमिनार का सब्जेक्ट ये है कि शाकाहार श्रेष्ठ आहार है, ये सब्जेक्ट ये है भाई साहब। हमको ये इस जनता को, हम समाज को शाकाहार की तरफ प्रेरित करना है, उद्देश्य क्या है? यदि ये शाकाहार सम्मेलन है इसलिए मैं आया हूं, यदि ये मांसाहार ठीक है कि शाकाहार ऐसा सेमिनार होता तो भी मैं नहीं आता। इसलिए मैं अभी आप लोगों को कहता हूं, एक आध दोस्तियां मैंने आपको सुनी है कि आपने जिस पक्ष को आप सही नहीं मानते हैं उसको विपक्ष बना दिया, कई दफे ऐसी गोष्ठियां की हैं आपने, यहां एक कभी नहीं करना चाहिए। एक तो वो सही ही नहीं है, हमको विपक्ष वाले तर्क ज्यादा हमें लाने ही नहीं है, क्योंकि उससे भी लोगों का दिमाग खराब होता है। एक दिन की दोस्ती थी, ये जैन धर्म पढ़ना सही है ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं रखा है जैन धर्म में, तो खूब झमझम के आपने गालियां दी जो आप पढ़ रहे हो उसी को, क्यों आप बाद प्रतियोगिता को मजाक बना देते हो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। सचमुच यदि तर्क है आपके पास तो गंभीरता से प्रस्तुत करो ना, अब की बात में दम है तो उसे गंभीरता से प्रस्तुत करना चाहिए। तो उसको यही सिद्ध कर दिया, माने इसकी जितनी गालियां तुमने ढूंढ ढूंढ ने सबने खोजी उस पक्ष वालों ने, और सब इकट्ठी कर दी लोगों को बताने के लिए, और सामने वालों को कोई बचा ही नहीं है कि जो ये बताएंगे ये वजह है। इन सब दर्शकों के दिमाग में हमें ये जमाना है, ये सर्वश्रेष्ठ तुमने सुना है सब्जेक्ट, अब इनके दिमाग में ये चुनाना है कि तुम आज यहां फंस गए हो बेटा, कि हमारे टीचर्स की क्या ड्यूटी है, बड़े दादा की क्या ड्यूटी है, शांति जी की क्या ड्यूटी है, किसी की क्या ड्यूटी है, मैं आज पूछना सबसे पूछना चाहता हूं। फिर वो बात तो मैंने कहा कि एक पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि प्रॉपर डाइट का सेमिनार नहीं है। फिर मैंने कहा कि ये यदि हमको 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं तो ये हमारा गुण है कि दोष, मैंने कहा ये तो गुण है, क्योंकि एक ही एक चीज खाते हुए आदमी ऊब जाता है। हमें जी कल मूंग की दाल बनी थी, आज भी मूंग की दाल खाते हुए क्या दिन खा सकते हो मूंग की दाल, बोलो। रोजीना दाल बदलना, रोजीना साग बदलना, हमको बदलना पड़ता है ना, रोजीना पूरी पकवान बदलना, और कभी कुछ कभी कुछ, तो मांसाहारियों को उसका चांस ही कभी नहीं मिलता है। और हमको तो सब विविध चीजें, हमको तो एक कौर रिपीट नहीं होता, एक रिकॉर्ड खाया, फिर ये सब्जी खाई, फिर दाल में लगाई, फिर चटनी खाई, फिर पापड़ खाया, फिर मतलब हम हमारे को रोजाना बदलते हैं और एक एक कौर पे बदलते हैं। तो ये तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, और वो 25 चीजें इकट्ठी करना कौन सी बड़ी बात है, वो सब वही तो है जो हमारी रसोई में विद्यमान ही है। चार तरह के अनाज है, चार तरह की सब्जियां हैं, चार तरह की दालें हैं, पर वही तो 25 हो गई ना, नींबू है वो सब ना, हमारी प्रॉपर डाइट तो है ही, हमारे पूर्वजों ने डाइट को प्रॉपर बनाया है। अरे आंवले जैसे कसायले पदार्थ को उनने हमारे बना रख लिया उसमें, क्यों कि उसमें जो चीज है वो बनी रहे, पहले अच्छी नहीं लगी होगी खाने वालों को, लेकिन उन्होंने कहा तुम इसमें नमक डालो, इसमें ये डालो, फलाना डालो, और इसको बनाओ स्वादिष्ट, उसको रुचिपूर्वक लोग खाएं। अरे जाने दो, करेला जैसे कड़े उन्होंने हमारी डाइट में शामिल कर दिया। मेरे कहने का मतलब है, एक तो मैंने ये सिद्ध किया, इसलिए ये हमारा गुण है, डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो 25 तरह की चीजों में प्रॉपर डाइट हमारे कैसे बनेगी, कितनी मात्रा में कौन चीज हमें लेना चाहिए वो हमें बताएं। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है, डॉक्टरों की ये ड्यूटी नहीं है कि वो वहां इकट्ठे मिल जाते हैं। दूसरी बात मैंने ये कहा कि डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो बनाए, कि बाजार में आजकल आ गया ना कि वो कौन सा भोजन कहलाते, वो आपको डब्बा बंद भोजन, फास्ट फूड, तो उसको ऐसे फास्ट फूड तैयार करें जो प्रॉपर डाइट हो और विशुद्ध शाकाहारी हो, ऐसे फार्मूले तैयार करें। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है, उद्योगपतियों की ये ड्यूटी है कि उनके अनुसार प्रोडक्ट बनाएं, और वो प्रोडक्ट बना के बाजार में लाए बिल्कुल अहिंसा प्रोडक्ट के नाम से। और ये हमारे पंडितों की और संतों की ये ड्यूटी है कि भाई ये ना बताएं कि नहीं ये बाजार के रखाने में कोई नहीं छोड़ने वाला है, घबराना नहीं। वो ये बताएं कि ये प्रोडक्ट अहिंसक है, गंगा को उल्टा बहाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आज लड़का और लड़की दोनों ही जाके नौकरी करेंगे तो कोई रोटी बनाने को तैयार नहीं होगा, मल बांट के बनानी पड़ेगी। तो जितना प्रॉपर जो डाइट बाजार से मिलेगी शुद्ध सात्विक नहीं मिलेगी तो वो खोटी खाएंगे, इसलिए अब वो बनाएं और उसको प्रपोज करें। इस तरह शाकाहार बच सकता है, यानी शाकाहार को बचाना है। तो फिर मैंने ये कहा कि अकेले स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को उठाना ये अच्छा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वो उसमें हिंसा से पैदा होता है तो हम उसको नहीं खाना। वो हमारा आहार, उसका शाकाहार नाम नहीं रखो, उसका नाम अहिंसक आहार रखो। क्या? क्योंकि फिर यही तर्क हमें खा जाएगा कि वो सिद्ध कर देंगे वैज्ञानिक कि मांस में ज्यादा प्रोटीन है, ज्यादा ये है, फलाना ये है, और फिर हमको यहां से वो आदमी जो शाकाहारी स्वास्थ्य की वजह से बना था उसे मांसाहारी बनते एक मिनट नहीं लगेगा। लेकिन वो अहिंसा के आधार पर यदि इसको अपनाएगा, अहिंसा के आधार पर अपनाएगा, तो वो कभी भ्रष्ट नहीं होगा। इसलिए इसे सबसे ज्यादा अहिंसा का आधार देना चाहिए। वो सहयोगी के रूप में आप स्वास्थ्य की बात कर सकते हो क्या? क्योंकि अकेले अहिंसा के आधार पर लोग मानेंगे नहीं, इसलिए सहयोगी के रूप में स्वास्थ्य की बात करो। लेकिन हमको मेन आधार तो अहिंसक ही बनाना चाहिए। क्यों? कल ऐसा हो जाएगा कोई आदमी ये सिद्ध कर देगा कि वो गाय का जो मांस खाते हैं उससे ज्यादा वो प्रॉपर डाइट जो है वो मनुष्य के मांस में है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें वैसे ही चाहिए जो मनुष्य के मांस में है। वो गाय जैसे मांस में है वो हमें थोड़ी अनुकूल हो, तो गाय के लिए अनुकूल है, तो फिर हम मनुष्य का खाने लगेंगे। फिर और वैज्ञानिक आएंगे तो वो कहेंगे जो दूसरी जाति के मनुष्य हैं वो मद्रासी बंगाली वाले के काम नहीं आएगा, मद्रासी को मद्रासी आदमी के मांस में वो मिलेगा। फिर कहेंगे उसे परिवार उसी उसी जाति वाले जैनी को जैनी का मांस खाएंगे तो उसे प्रॉपर डाइट मिलेगी, फिर अपने घर का परिवार का क्या करोगे? मतलब समझे ना, ये सब बातें मैंने उस वहां कही, पर सर ऐसे कान लगा के चक्के हुए, माफी मांगी बाद में। वो डॉक्टर ने तो मेरे घर पे आके भी माफी मांगी थी, कहने सारी गलती होगी। हम अहिंसा के आहार, हमारा जैनियों का आहार अहिंसा का आहार है। ऐसे एक दफे जो है ना आरएसएस वाले, तो इन्होंने ईंटें रवाना की थी कहां महावीर जी से, एक वो निकाला था यात्रा, तो मुझे भी बुलाया था उसमें, और उसमें रितंबरा भी थी, रितंबरा का नाम सुना शादी, और वे गुमानमल जी लोड़ा भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े लोग। तो वहां भी मैंने ये कहा था कि आप गो हत्या की बात बहुत करते थे, तो मैंने कहा अहिंसक वोट बैंक तैयार करो आप, उसका नाम अहिंसक वोट बैंक दो। अकेली गाय की हत्या की बात नहीं, क्या बकरी को की हत्या होने देना चाहिए? ये, ये, एक गाय का ज्यादा होता है, जो गाय की बात करें बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम एक अहिंसक वोट बैंक तैयार करें और जो कहें कि हमारे जो आदमी उसी को वोट देंगे जो इन अहिंसा के सिद्धांतों को मानता होगा। आप सुने ना, कम से कम इतने ही कहें जो शाकाहारी होगा, मैं समझी ना। और फिर हम लोग कहेंगे हमारे हमने 1 करोड़ लोग हैं, बोलो जिसको वोट चाहिए हो तो वो उसको अपनाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे भोजन का, आहार का, विहार का, सबका आधार जैन दर्शन का अहिंसा है। यदि हमें आहार की बात भी करनी है तो अहिंसा की दृष्टि से करनी है, यदि हमने शराब की बात करनी है तो उसमें जो अनंत जीव मरते हैं उसको मुख्य मुद्दा बनाना है। फिर दूसरा नंबर का मुद्दा है नशा, जो हमारे विवेक को नष्ट करता है शराब में। क्यों? कि यदि हम अकेले अहिंसा को बनाएंगे तो नशा को नहीं बनाएंगे, तो एक संकट और खड़ा हो जाएगा, फिर वे कहेंगे भांग में तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो चाय की पत्ती जैसी है, नीम की पत्ती जैसी है, मतलब भांग तो एक पेड़ है, पौधा है और उसकी पत्ती है, तो उसमें तो जितनी चाय में दोष है जितना नीम की पत्ती आप लाते हो, कोई भी समझ लो मेथी की भाजी खाते हो, जो भी अहिंसक जो चीज लेते हो ऐसा ही दोष है, फिर ये संकट खड़ा हो जाएगा। तो हमने पहला मुद्दा कौन सा, अहिंसक, और दूसरा मुद्दा कौन सा, नशा कारक। इसीलिए भांग से शराब ज्यादा खतरनाक है, अंतर समझ में आया ना है? फिर और हमारे यहां फिर लिए नशा कारक लिए, फिर पहले हिंसक लिया, फिर नशा कारक लिया, फिर बाद में अनिष्ट भी लिया, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, उसको भी लिया कि नहीं लिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा हर कदम अत्यंत विवेक सम्मत होना चाहिए, उसके पीछे जो वो तर्क मजबूत होना चाहिए, हम वो दूसरी चीज को हम इनकार नहीं करें, लेकिन हम उस चीज को अहिंसा वाले पॉइंट को मुख्य रखें, हम हर हमारे आचरण में तो हमारी चीज वास्तविक मजबूती होगी। यहां पर भी जो इन्होंने कहा ना, शूद्रा का उदाहरण दिया कि दोनों शूद्रा के बेटे थे, दोनों कर्म जाति के हैं, अब एक ब्राह्मण बन बैठा क्योंकि ब्राह्मण के यहां पला था, अब ये कहना चाहते हैं कि दोनों कर्म जाति के हैं और उसमें एक धर्म बन बैठा, वो जो शुभ कर्म है वो धर्म बन बैठा क्या नहीं बना क्या था। तो इसको मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद, समझो गोत्र उसका कर्म था, अब उसके दो बेटे हुए, तो उसने एक बेटे का नाम रखा करमचंद और दूसरे बेटे का नाम रख दिया धर्मचंद। अब मैं पूछता हूं वे दोनों करमचंद हैं कि धर्मचंद हैं? पिता तो दोनों के कर्म ही है ना, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, तो दोनों का तो कर्म कर्म पिता है ना, लेकिन इसने धर्म नाम रख लिया इसलिए लोगों को भ्रम हो गया। लिखा ना कि भ्रम भ्रम लिखा ना, जाति भेद भ्रमेण, जाति भेद के भ्रम से है? अब नहीं देखो ये जो रोला छंद दो रोला में समाया है, है ना, ये रोला छंद है दोनों, जो कितना सरल है जो बात आपसे कही जा रही है उसका जो पद्यानुवाद है उसमें कितनी साफ होती जाती है बात। दोनों जन में एक साथ शूद्रा के घर में, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, कितना स्पष्ट कितना सहज कितना सरल। कल बोलता था बहुत कठिन हो गया बहुत कठिन हो गया, क्यों आजकल तो सरल लगा ना, ये तो सब समय सार में सबसे सरल अधिकार पुण्य पाप अधिकार है, है ना, सबसे सरल जो है वो पुण्य पाप अधिकार है। देखो अभी इसका अर्थ नहीं पढ़ता हूँ, हो गया खत्म। ये तो उत्थान का आगे कलश थे, अब कल मूल गाथा शुरू होगी 143 गाथा कल।